नमस्कार दोस्तों, एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के सुनहरी तरंगों पर आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम छूलो आसमान में आपसे रूबरू होंगी मधुरा समर्थ, जो है फाउंडर ऑफ रिपल एनिमेशन। इनसे बातचीत कर रहे हैं विकास मिटिसन, जो है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट ऑफ IBG एंड द ऑनररी कौंसुल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली।
We have with us Ms. Madhura Samarth, founder of Ripple Animation. I am Vikash Mittersen, as usual. Welcome, Madhura, to All India Radio.
Thank you. It's a pleasure to be here.
Is this your first time?
Yes, absolutely. On the radio? Yes.
So you've never seen the insides of a studio?
I've seen the insides of many studios, but okay. Not a radio.
Not a radio studio. I meant a radio studio. Tell me about your early life. Were you born and brought up in India or overseas?
तो हाँ, मेरा जन्म मुंबई में हुआ था और मैं यहाँ रही थी जब 7 साल की थी तब तक। और उसके बाद हम दिल्ली को गए थे क्योंकि मेरे पिताजी ओगिलवी एंड मेथर एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उनकी ऑफिस सेटअप करने गए थे वहाँ। और फिर 11 साल में मैं वापस आ गई जब मैं 6th grade में थी। और फिर यहाँ थी 18 साल की थी तब तक। और अधिकतर टाइम एक्चुअली मैंने अपने दादी के साथ बिताया था। अच्छा। क्योंकि बोथ मेरे मम्मी और पापा काम करते थे।
अच्छा।
मेरी मम्मी एयरलाइन इंडस्ट्री में थी।
ओके।
और वो 5-6 बजे तक काम करती थी। और मेरी दादी ने मुझे बड़ा किया था तो उनसे बहुत सीखा। वो भी एक मशहूर एक्ट्रेस थी।
हाँ।
और फिर उनका एक बिजनेस था तो अर्ली एज से मुझे मालूम था कि मुझे भी बिजनेस करना है।
ओके।
और उनके तरह बनना है।
क्या नाम था उनका, एक्ट्रेस थी आप बोल रहे हैं?
शोभना समर्थ।
उन्होंने बहुत फेमस है।
हाँ, उन्होंने बहुत रोल्स किए थे, अधिकतर सीता की रोल्स।
अच्छा।
तो बहुत कहानियाँ सुनी थी उनके बिजनेस के बारे में सुना था।
तो आपने कभी नहीं सोचा
कि नहीं
हम भी फिल्म लाइन में चले जाएं?
नहीं, क्योंकि
हिस्ट्री तो है।
हाँ, लेकिन मैंने देखा था कि फिल्म लाइन में आइदर यू आर वेरी सक्सेसफुल
या नथिंग,
और आप फेलियर्स बहुत पब्लिक होती हैं। और एज टाइम पासेस आप बूढ़े होते हो तो आपको कोई देखता भी नहीं है। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा।
तो आपने सेफर साइड पे करा।
बिजनेस सेफ है या नहीं मुझे मालूम नहीं, बट हाँ मुझे लगा उस टाइम मैं सेफ काम कर रही हूँ।
पर एटलीस्ट अपने खुद के कंट्रोल में कुछ तो रहता है। फिल्म लाइन में तो कुछ कंट्रोल है ही नहीं। हाँ। आप एक्टिंग करो और चले जाओ।
हाँ बिल्कुल।
जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। Thank you. का रूप जैसे सर्दी की धूप जैसे बिना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा दल की आग जैसे सोला सिंगार जैसे रस की पुआर जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा
आपके एजुकेशन के बारे में बताइए।
फर्स्ट मैं यहाँ बॉम्बे में थी ग्रीन लॉन स्कूल में फिर मैं दिल्ली को गई थी वहाँ मैं मार्टरे कॉन्वेंट में पढ़ी थी और फिर सिक्स स्टैंडर्ड में जब वापस आई तो कैथीड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल साउथ बॉम्बे में है वहाँ मैंने 12वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे अमेरिका भेजा था और मैंने तय किया कि मैं इकोनॉमिक्स डिग्री करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बैंकर बनना था
उस टाइम पे ही पता
हाँ,
था।
उस टाइम लोग कहते थे कि बैंकिंग में सबसे बड़ा
स्कोप है
तो मैंने सोचा चलो उसको भी ट्राई कर लें तो मैं लिबरल आर्ट्स स्कूल में गई थी जहाँ सब सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर था राइट फ्रॉम फिलोसफी टू रिलीजियस स्टडीज टू इकोनॉमिक्स टू मैथ्स सब तो बेस सब में था लेकिन मेजर 2 साल इकोनॉमिक्स में था।
इसमें NYU में थे या किधर?
नहीं मैं विस्कॉन्सिन में पढ़ाई कर रही लॉरेंस यूनिवर्सिटी लिबरल आर्ट्स कॉलेज है बहुत अच्छी स्कूल थी। उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गई और मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब मिला था वहाँ वॉल स्ट्रीट पर तो पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अच्छा ये जॉब मिला है पैसे अच्छे आ रहे हैं बॉस अच्छे हैं लेकिन 3-4 महीने में मुझे मालूम पड़ा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी लॉन्ग टर्म।
अच्छा क्योंकि
मुझे तो खुद का बॉस बनना था।
अच्छा।
लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो चाहिए और तो मैं वहाँ 3-4 साल काम मैंने किया 3-4 साल वहाँ काम किया फिर द अदर थिंग इज मुझे वापस घर आना था मुझे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहना था तो फिर मैंने पापा को बोला कि मैं मुझे वापस आना है तो सब लोन्स पे किए वापस कॉलेज के और मैं आ गई
बस एंड ऑफ स्टोरी
नहीं
फिर नया स्टोरी चालू हुआ
फिर मैंने सोचा चलो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना था बॉम्बे में लेकिन उस टाइम फिर वो 9/11 हुआ तो किसी को इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में इन्वेस्ट करने तो फिर मैं सोच रही थी अब क्या होगा इतनी अच्छी जॉब छोड़ी है मैं वापस आ गई हूँ अभी पैसे कमाने हैं कैसे होगा तो फिर मैंने मेरे पापा से पूछा मैं आपकी बिजनेस ज्वाइन कर सकती हूँ।
अच्छा।
तो उस टाइम वो टीवी कमर्शियल्स बनाते थे और वे कहने लगे हाँ आपको आना है तो आ जाओ लेकिन इतना स्कोप नहीं है इस बिजनेस में तो मैंने स्टार्ट किया उनके साथ और थोड़ी
तो शार्प शूटर फिल्म्स था, उनका था क्या?
नहीं तो पिंसर कम्युनिकेशंस था।
ओके।
फिर WPP ग्रुप जो ओगलवी एंड मेथर JWT
ओन करते हैं,
हाँ को ओन करते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आपसे जॉइंट वेंचर करना है क्योंकि हमें लग रहा है कि टीवी प्रोडक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा बिजनेस है और बहुत स्कैटर्ड है ये इंडस्ट्री, तो हमको कंसोलिडेट करना है शार्प शूटर्स फिल्म्स में, को रन करोगे क्या
एट दैट यंग एज? यंग ही थी एज तो,
नॉट दैट यंग बट व्हाटएवर। फिर उसके बाद हमने शार्प शूटर्स फिल्म स्टार्ट किए थे और 3-4 साल में अच्छा नाम भी कमाया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी कि सिर्फ एजेंसीज हमारे क्लाइंट्स हो सकते थे और सिर्फ कंट्री में 10-15 एजेंसीज हैं,
तो डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं ले सकते
क्योंकि क्योंकि उस टाइम टीवी कमर्शियल्स बनाने के लिए पहले बहुत सारे पैसे लगते थे, सो ओनली द बिग कंग्लोमरेट्स कर सकते थे, फिर एयरिंग के तो और भी ज्यादा उससे 10 गुना, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस नहीं है, तो सब रिलेशनशिप ड्रिवन था, तो फिर थोड़ी बेचैनी हो रही थी और फिर उस टाइम थोड़ा डिजिटल आगे आ रहा था और सब एजेंसीज डिजिटल पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही थी, तो हमने पूछा उनको आपके क्लाइंट्स को एक्सप्लेनर वीडियोस चाहिए, मार्केटिंग वीडियोस चाहिए, तो वो बोले कौन करेगा 1-2-3 लाख में, हम लोग तो 50 लाख करोड़ की कमर्शियल्स बनाते हैं, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स नहीं है इस छोटे छोटे काम के लिए, तो फिर हम लोग डायरेक्टली क्लाइंट्स को अप्रोच करने लगे और हमने देखा बहुत बड़ा गैप है मार्केट में, इनको बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं छोटे छोटे बजट्स में और एजेंसीज उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और डिजिटल ऐसा है कि शेल्फ लाइफ भी कम है, तो जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने पड़ते हैं और यू कांट हैव बिग बजट्स एंड हैव एक कमर्शियल रनिंग पूरे साल के लिए। हमने वैसे स्टार्ट किया और फिर सब लार्ज बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हमारे क्लाइंट्स बन गए और फिर उनके ईच बैंक के 30-40 प्रोडक्ट्स हैं, ये 30-40 प्रोडक्ट उन्हें कस्टमर्स को एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करना पड़ता है, इंटरनल कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज के साथ करनी पड़ती हैं, तो फिर 1-2 मिनट के वीडियोस मोस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि आजकल कोई पढ़ी नहीं रहा,
आजकल टाइम ही नहीं लोगों को,
और अगर 3 पैराग्राफ दे किसी को पढ़ने को कोई पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमने ये वीडियोस बनाए 2-2 मिनट के जहाँ बहुत इजी है लोगों को समझने कि क्या एक्सप्लेन हो रहा है, क्योंकि आप ऑडियो भी यूज कर रहे हैं और विजुअल भी यूज कर रहे हैं, तो मैसेज 2 तरीके से दे रहे हैं, तो वो याद भी रख सकते हैं मैसेज, ब्रांड अवेयरनेस भी अच्छा होता है। और हाँ, तो ऐसे हमारी कंपनी रिपल एनिमेशन खुली छोटी छोटी तरीके से और अभी हम लोग आई वुड से हम लोग नंबर 1 बने हैं इस बिजनेस पे एक्सप्लेनर वीडियोस, और मोस्टली हमारे एक्सप्लेनर वीडियोस एनिमेटेड होते हैं।
अच्छा।
क्योंकि उसका कॉस्ट हम लोग मैनेज कर सकते हैं और जितने सीन्स चाहिए हो सकते हैं, जितने कैरेक्टर्स चाहिए हो सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट, तो द स्टोरी कैन बी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन टेल इट नाइसली।
जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ
हर कंपनी के पास एक तो प्रोडक्ट सर्विस या कोई ऑफरिंग होगी, तो हर कंपनी को एक्सप्लेन करना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को कि हम क्या करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर रहे हैं और की बेनिफिट्स क्या हैं हमारे प्रोडक्ट की। तो अगर आपको कहने जाए कि तीन पैराग्राफ पढ़ना या एक दो पैराग्राफ पढ़ना, आजकल के ज़माने में कोई पढ़ेगा नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन आ रहा है उनकी तरफ कि वो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, नहीं तो देख रहे हैं क्या मुझे यूज़फुल लगेगा। तो ये वीडियो, एक दो मिनट की वीडियोज़ उनके वेबसाइट पे बैठ सकते हैं, उनके सोशल चैनल्स पे बैठ सकते हैं, न्यूज़लेटर्स से भेज सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझा सकते हैं कैसे हम लोग सेल कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट।
तो ये B2B है, ये कंज्यूमर नहीं है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर नहीं है ये।
हमारा बिजनेस B2B है, लेकिन जो कम्युनिकेशन हम करते हैं क्लाइंट्स के लिए वो B2C हो सकता है, क्योंकि उनके क्लाइंट्स तो कस्टमर्स होंगे ना। तो जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उनके लिए बनाते हैं।
तो ये जनरल एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है,
बिल्कुल ये नहीं, इट्स ऑल बिजनेस। और हमारे वीडियोस ड्राइव एक्चुअल बिजनेस रिजल्ट्स। तो हम कहते हैं और दिखाते भी हैं कि 30% इंक्रीज हो सकता है आपके कन्वर्जन रेट्स में वीडियो यूज करने से। आप लैंडिंग पेज पे वीडियो डालो तो डेफिनेटली आपका कन्वर्जन रेट ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि पीपल सब समझ में आएगा कि बेनिफिट्स क्या है मेरे लिए, इज दिस प्रोडक्ट यूजफुल फॉर मी और नॉट।
तो वो अपने फिर ना कस्टमर्स को देते हैं।
हाँ, तो पोटेंशियल कस्टमर्स, हाँ कस्टमर्स तो बहुत सारे मीडियम्स हैं। यू कैन डू डिजिटल एड्स, यूट्यूब पे ऐड डाल सकते हो, अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हो ये वीडियोस, सोशल चैनल्स पे डालोगे, इंटरैक्टिव बैनर्स में डालोगे, सब जगह जा सकता है। इनफैक्ट सम ऑफ आर एड्स सिनेमा में भी गए हैं।
हाँ,
एक ऐड हम लोग हमें
थिएटर्स
हाँ 60 सेकंड का थिएटर्स अच्छा? में भी गया था
ओके okay, अभी तो कुछ समझ में तो आया है कि ये ना व्हेन यू मीन अ स्मॉल फिल्म एड फिल्म इट इज़ रियली फॉर देयर कस्टमर्स योर कस्टमर्स कस्टमर्स
यस हाँ और हमारा पूरा फोकस है ड्राइविंग बिजनेस रिजल्ट्स आपके बिजनेस का रिजल्ट हो वही हमारा मकसद
आपका है रिजल्ट है
हाँ
थोड़ा अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताइए फैमिली आर यू मैरिड बच्चे
हाँ सो आई एम मैरिड मेरी शादी हुई थी मेरे चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से हम लोग हाँ 17 साल के से से डेट कर रहे थे लेकिन फिर मेरे हस्बैंड भी अमेरिका पढ़ने गए थी डिफरेंट प्लेस में बहुत दूर मैं भी अलग थी और फिर हम 10-15 साल के बाद हमारी शादी हुई थी और अब मेरे दो बच्चे हैं मेरा बेटा नील 12 साल का हुआ कल एक्चुअली और मेरी बेटी लेला 9 साल की हुई है और दोनों कैथीड्रल में जाते हैं सेम स्कूल
वेरी नाइस तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं साथ में करते
हैं हमने ये बिजनेस साथ में खोला था कहते हैं ना बिजनेस में एक पार्टनर ट्रस्टेड पार्टनर की जरूरत है
और वेरी डिफिकल्ट
नहीं हमारे
ना ऑफिस में भी साथ में बैठ के काम कर रहे हैं फिर घर जाके फिर वही बात करते होंगे
नहीं बिल्कुल नहीं ऑफिस में हम अलग से बैठते हैं हम बात भी नहीं करते हैं और घर में हाँ योर राइट बहुत ऑफिस का काम डिस्कस करते हैं बच्चों को बहुत गुस्सा आता है
नहीं करना चाहिए
लेकिन हाँ वो हैबिट है जो तोड़नी चाहिए डेफिनेटली
तो है ना हस्बैंड वाइफ अनयूजुअल क्वेश्चंस कभी कभी मैं पूछता हूँ स्टाफ कैसे टॉलरेट करते हैं जब हस्बैंड और वाइफ ही ना सब कमांड कर रहे हैं
तो हमारी स्टाइल्स बहुत अलग हैं विवेक मेरे हस्बैंड है वो बहुत धंधे का सोचते हैं प्रॉफिट का सोचते हैं रेवेन्यू का सोचते हैं और मैं सॉफ्टवेयर मैं एम्प्लॉइज का सोचती हूँ मैं कस्टमर्स का सोचती हूँ तो हमारे अप्रोच इतने अलग हैं कि
दो अलग लोग
हाँ एंड वी डोंट अग्री विद ईच अदर मेनी टाइम्स तो सबको मालूम है कि व्हाट इज राइट विल हैपन फाइनली
मजनू शिरी और फरहा इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद मुझे आया है कैसे दिलबर का नाम जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम यही है साहिबान कहानी प्यार की किसी ने जान ली किसी ने जान दी एक हसीना थी एक दीवाना था क्या उम्र क्या समा क्या जमाना वो मिले
रोज मिलने लगे
एक दिन वो मिले
रोज मिलने लगे
फिर मोहब्बत हुई
बस कयामत हुई
हो गए तुम कहां सुन के ये
इश्क की वो गली
गली में मेरा आना जाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था, एक हसीना थी एक दीवाना हसीने कहा, उस हसीने कहा,
सुनो जाने वफा ये फलक ये जमी तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं प्यार करती हूँ मैं,
बात कुछ और थी वो नजर चोर थी
उसके दिल में छुपी
सीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां, जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान की हैरान थी, सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ, उसमें ये फर्ज था उसका ये फर्ज था, फर्ज को कर्ज अपना
मैं हूँ विकास मित्तल सेन, हमारे साथ हैं मिस मधुरा समर्थ। ये बताइए, आप आर्टिकल्स भी बहुत लिखती हैं, यू आर अ राइटर?
आई राइट अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स, मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ। जो भी थॉट लीडरशिप पीसेज मेरे मन में आते हैं, क्योंकि हम रियली फॉरफ्रंट पे हैं जो बिजनेस में हम कर रहे हैं, वो ऑल्सो मैं बहुत स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, तो जो भी ज्ञान वहाँ से आता है कभी कभी ऐसा लगता है कि वो शेयर कर लें, तो
अच्छा
हाँ वो भी लिखती
हूँ। फेसबुक पे लिखते हैं?
नहीं नहीं, मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ समटाइम्स,
ब्लॉग्स का जो ये रहता है,
हाँ लिंक्डइन पे, और अभी एक्चुअली मैं जस्ट सर्कुलेट करती हूँ अपने व्हाट्सएप ने तो ईमेल से मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में जिन्हें इंटरेस्ट है, मुझे मालूम है इनको इंटरेस्ट है, उनके लिए मैं लिखती हूँ।
बुक लिखने का नहीं सोचा है क्या कभी?
जब टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली।
कभी नहीं मिलता है, टाइम तो करना पड़ता है।
हाँ नहीं, एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया, और जब मुझे कुछ कहने का हो तब मैं लिखूंगी।
इतने जो ब्लॉग्स है ना, इनकी बुक बन जाएगी?
हाँ वो भी हो सकता है, एक कोहेरेंट थीम लेकर करना पड़ेगा।
मैंने भी ऐसे ही करा, मैं फेसबुक पे बहुत लिखता हूँ, मैंने बुक बना दी ऑन माई पोस्ट।
अच्छा,
दो साल की पोस्ट लेके
हाँ
उसमें से सेलेक्ट करके आई प्रिंटेड अ बुक पब्लिश्ड।
अच्छी आइडिया है।
यू कैन डू द सेम।
हाँ
कि अगर इतना लिखते हैं ब्लॉग्स तो कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी है, उसको कैसे प्रेजेंट करना इज द ओनली थिंग टू डू अ बुक।
करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही।
इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ बी एन ऑथर, टू बी एबल टू से दैट आप ऑथर हैं, एंड देन आई विल कम कि आपका फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशन है।
तो लाइफ के बारे में क्या मिस किया है? बहुत अप्स एंड डाउन्स हुई हैं लाइफ में,
हुई है।
आप क्योंकि आपको मालूम है, आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, कि जब बिजनेस होता है एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इन द सेम बिजनेस, तो अगर टाइम्स अच्छे नहीं होते तो टाइम्स अच्छे नहीं होते। हाँ तो बहुत सहमत रिजिलियंस
रखना
पड़ता है, अपने आप को कहना पड़ता है दैट इट विल ऑल वर्क आउट। आस्ते आस्ते से यू हैव नॉट टू परसिवियर, गिव अप नहीं करना चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए, और इट्स ओके इफ अदर पीपल हैव थिंग्स यू डोंट हैव। तो ऐसे करके करके अभी सब ठीक हो रहा है स्लोली। हाँ
मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं दो बार बैंकरप्ट हो गया 30 इयर्स में ऑफ वर्किंग, कम्प्लीटली बैंकरप्ट, और फिर भी है ना चलते गए तो वापस आ गए।
हाँ हाँ, कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब होती है और पेरेंट्स से पैसे नहीं ले सकते, तो मैनेज करना पड़ता है कैसे भी, पर्सनली कट डाउन करना पड़ता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, सैलरीज पे करनी पड़ती, तो कैश फ्लोज तो ऑलवेज स्टार्टअप में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन समहाउ मैनेज हुआ है।
अभी मैंने और एक बात पूछी थी, फ्यूचर में क्या आपका, आपको क्या लगता है अपना फ्यूचर एंड जनरली ऑल्सो बिजनेस का इन इंडिया?
बिजनेस का इन इंडिया मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी विथ यंग पॉपुलेशन, और हम बहुत हंग्री हैं एज अ नेशन, तो जब वो हंगर रहता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है,
वो ये है ड्राइविंग फोर्स,
ड्राइविंग फोर्स है, और हमारी संस्कृति भी बहुत स्ट्रांग है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ऊपर ही जाने वाला है, और अनलाइक चाइना वी आर अ डेमोक्रेसी, सो मे बी वी आर अ लिटिल, हमारी ग्रोथ शायद थोड़ी कम होगी, लेकिन एटलीस्ट हम लोग ठीक तरह से कर रहे हैं, अच्छी राह पे चल रहे हैं। और मेरा पर्सनल फ्यूचर है, अभी हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं स्मॉल मार्केट्स के लिए, विच आर मच लोअर प्राइस देन आर करंट ऑफरिंग, तो वो पूरी मुझे लगता है इट्स अ वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में जो ऑटोमेटिकली लोग तीन इनपुट देके, टेक्स्ट इनपुट देके उनका वीडियो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा।
ये तो कुछ यूनिक चीज है, आप बता रहे थे मेरे को, ठीक से समझ में नहीं आया।
तो क्या है इज हर बिजनेस को अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो अभी हम क्या करते हैं, उनसे ब्रीफ लेते हैं, फिर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, तो पूरा बिगिनिंग टू एंड से हमें क्रिएट करना पड़ता है। अभी हम टेम्पलेट्स बना रहे हैं जहाँ हम सिर्फ उन्हें तीन क्वेश्चंस पूछेंगे, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो मार्केट में, कैसे सॉल्व कर रहे हो ये प्रॉब्लम, और यूज़र को क्या बेनिफिट आएगी इससे, और उन्हें कैरेक्टर लिमिट देंगे, तो चार लाइन या पांच लाइन में आंसर करने हैं ये तीन क्वेश्चन, जैसे और कोई भी लैंग्वेज में टाइप करेंगे, और जैसे ये होगा वो लोग टेम्पलेट चूज करेंगे और ऑटोमेटिकली उनका वीडियो क्रिएट हो जाएगा विथ म्यूजिक एंड एवरीथिंग.
आई थिंक दिस इज अ यूनिक थिंग.
हाँ, और एन अ कॉल टू एक्शन आएगा तो कहेंगे विजिट दिस वेबसाइट टू नो मोर, कॉल दैट नंबर टू नो मोर, यूज दिस व्हाट्सएप टू नो मोर. तो उनका बिजनेस ऐसा ऐसे बढ़ेगा एंड इट्स अ वेरी वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट.
अब एमएसएमई के लिए भी बनाते हैं या ओनली अपर लेवल?
तो अभी करंट बिजनेस सिर्फ लार्ज कंग्लोमरेट्स और स्टार्टअप्स, फंडेड स्टार्टअप्स जिनके पास बजट्स हो. बट दिस न्यू प्रोडक्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि दिस टारगेट्स दी एसएमईज. तो 10-15 हज़ार में आपका वीडियो बन जाएगा
रियली really?
और कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू गो इनटू अ टाइमलाइन, यू डोंट एडिट नहीं करना है, कुछ म्यूजिक नहीं ऐड करना है, कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ टेक्स्ट डालना है इनपुट, दैट्स इट.
ओके,
और कलर्स चूज करने हैं. आपका लोगो हो तो लोगो अपलोड कर दो, वो भी ऑटोमेटिकली वीडियो पे आ जाएगा. और अपना वेबसाइट नहीं तो फोन नंबर दे दो, बस इतना ही करना है आपको.
ये तो बहुत बड़ा मार्केट है. इंडिया का जीडीपी में 60% एमएसएमई है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीडीपी. सो ये जो है आई डोंट थिंक ये प्रोडक्ट आज के दिन अवेलेबल है.
नो,
आपके तो बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए.
हाँ, तो अभी प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं, यूजर को बहुत काम करना पड़ता है. उनको एक टाइमलाइन में ड्रॉप करना पड़ता है एक सीन, एक कैरेक्टर, उनको एक्चुअली काम करना पड़ता है जैसे ना एनिमेटर करता है. और किसको टाइम है ऐसे करने को, और नो हाउ भी नहीं है. तो हमारा प्रोडक्ट ये पूरा सिंप्लीफाई करता है. आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट डालना है बस.
इंडिया में हजारों MSMEs हैं, आप रीच आउट कैसे करेंगे? आपका प्रोडक्ट ये है, क्यों बजट तो रहते नहीं है बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करने के, क्या सोचा आपने?
हाँ, तो दिस इज़ वेयर फेसबुक कम्स इन.
अच्छा,
फेसबुक पे हमारे सब पॉपुलेशन SMEs सब फेसबुक पे हैं. तो उनको बहुत टारगेटेडली हम लोग एडवर्टाइज करेंगे. वहाँ रेट्स भी बहुत कम हैं.
अच्छा,
तो बहुत ईजी है इन लोग को रीच करना. और कॉल टू एक्शन डाल देंगे फेसबुक, फिर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे. तो वो लोग कीवर्ड्स डालेंगे, नीड वीडियो, मेक वीडियो, चीप वीडियो, फ्री वीडियो, उस पर हम लोग रैंक होंगे. और कॉन्फ्रेंसेस में बात करेंगे.
बात करना चाहिए. कॉन्फ्रेंसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रमोशन के लिए कि मोस्टली जो कॉन्फ्रेंसेस में लोग आते हैं वो MSME वाले ही आते हैं.
करेक्ट. हाँ,
तो बड़े लोग नहीं आते हैं कॉन्फ्रेंस में.
हाँ,
तो आप देखेंगे अगर तो 95% रहेंगे MSME. तो जितना मतलब कॉन्फ्रेंस में आप टाइम वेस्ट नहीं होता है, टाइम यूटिलाइज होता है एंड वहाँ पे लाइव रहते हैं लोग, आपके कस्टमर्स वहीं के वहीं हैं.
हाँ,
अगर आप वहाँ पे बात करें, कम से कम हर एक कॉन्फ्रेंस में 100 लोग तो रहते ही हैं.
हाँ,
तो 100 के 100 में से कुछ नहीं तो 80% तो आपके क्लाइंट्स हैं.
करेक्ट.
तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हो गया.
हाँ, और हाँ, बस फिर आउटरीच करेंगे आउट कैंपेन से. तो यही डिजिटल मेनली उस प्लान है, डिजिटल मार्केटिंग यूज करना है हमें.
गवर्नमेंट के आजकल बहुत बेनिफिट्स आ रही हैं तो आपके जैसी चीज़ों के लिए, कंपनीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए. आपने कभी सोचा है गवर्नमेंट को अप्रोच करना? उनका स्किल डिपार्टमेंट जो है उसमें इतना पैसा दे रहे हैं लोगों को, तो ये भी कभी सोचा है क्या आपने? और यू थिंक आपके काम की चीज़ हो सकती है?
हो सकती है. ऑनेस्टली मैंने एक्सप्लोर नहीं किया ऐसे.
इसमें स्कोप बहुत है बिकॉज गवर्नमेंट पैसा बहुत दे रहा है फॉर ट्रेनिंग, फॉर स्किलिंग, एंड MSME ऑल नीड्स इट.
हाँ,
वो क्या छोटा मोटा काम कर रहे हैं बट उसके आगे कैसे जाना उनको नहीं पता है. इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है. शायद आपके भी काम की चीज़ हो सकती.
डेफिनेटली मैं चेक कर लूँगी.
रबा मेरे मैनू बचा
जरा सा झूम लूं मैं
अरे नारे नारे ना
जरा सा घूम लूं मैं
अरे नारे नारे ना
आ तुझे चूम लूं मैं
अरे नारे बाबा ना
मैं चली बन गई हवा
रब्बा मेरे मैनू
हमारे साथ ये थे मधुरा सामर्थ जी मैं तो विकास मित्र सेन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस
माय प्लेजर
एंड बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे एंड ऑल द बेस्ट
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी
ने सुनी है कि आप अभी जो बात कर रहे थे फिल्म के बारे में आपने भी बोला था आप शोभना सामंत जी के ग्रैंड डॉटर हैं, डायरेक्ट ग्रैंड डॉटर हैं।
हाँ, उनकी इकलौते बेटी की
बेटी।
हाँ,
तो वो हिस्ट्री क्या थी उनके टाइम की और कब कब थी वो फिल्म लाइन में?
तो उनकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि जब वो पैदा हुए एवरीवन सबको लगा है कि वो नहीं बचने वाली, क्योंकि वो 7 मंथ्स में पैदा हुई थी और उन्होंने उन्हें उनको साइड में रख दिया और उसके मदर पे फोकस करने लगे,
इनको तो ठीक कर ले।
हाँ, तो उनके ग्रैंड मदर ने देखा कि अच्छा बेबी की तो छोटी उंगली हिल रही है, तो उन्होंने उस टाइम इनक्यूबेटर नहीं थे तो क्या किया, गरम ठंडे पानी में डाला बॉडी को शॉक करने, और सर्वाइव हो गई।
अलाइव हो गई।
हाँ, और फिर उनके पिताजी जो थे वो कोलंबिया गए थे अमेरिका में बोट पे उस टाइम स्टडी करने के लिए।
अच्छा।
और जब वे वापस आए उन्होंने इंडिया का पहला बैंक खोला था।
रियली?
हाँ, तो वो उनके पास बहुत पैसे थे। और फिर क्या हुआ, वो लोग अंडरग्राउंड मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हेल्प करने लगे।
अच्छा।
पैसे देने लगे। तो ब्रिटिश को मालूम पड़ गया,
जेल वेल में डाल दिया गया।
एक दिन में उनका पूरा बिजनेस बंद हो गया।
अच्छा।
सारे एसेट्स फ्रीज हो गए।
हाँ।
और फ्रॉम हैविंग एवरीथिंग टू नथिंग।
रियली?
और मेरी दादी 13 साल की थी उस टाइम। और फिर 1 साल के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया।
ओह।
उनको बहुत शौक
लग गया
था। जेल वेल नहीं गए लेकिन उनकी पूरी लाइफ खत्म हो गई ना। और फिर वो लोग अपने, वो मेरी दादी अपने मामा के घर में रह रहे थे।
अच्छा।
तो कोई सहारा नहीं था। और उन्होंने कहा, 17-18 साल की हो गए, कहा आप शादी कर लो। तो कह रही थी मुझे शादी नहीं करनी है। और वो बहुत सुंदर थी तो उनको फिल्म ऑफर्स आने लगे।
अच्छा।
और मामा जी बोले नहीं, कोई अच्छी फिल्म की, अच्छी घराने की बेटी फिल्म में नहीं जाएगी, बिल्कुल ही नहीं जाएगी। तो वो बोले प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये होगा नहीं, फॉरगेट इट। और फिर मेरी दादी की मम्मी जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने कहा नोबडी विल टेल माय डॉटर व्हाट टू डू।
अच्छा।
उसको जो भी करना है, लड़की या लड़की हो, वो करेगी। तो वो लोग शिफ्ट हो गए, 50 रुपए की रेंट में रहने लगे दादर में, दादर के कोई फ्लैट में।
अच्छा।
और उन्होंने कहा, सब मामा ने कहा अच्छा पहले तो शादी कर लो।
अच्छा।
आपसे कौन शादी करेगा अगर आप फिल्म एक्ट्रेस बन गई। तो हमारा डिस्टेंट रिलेटिव थे वो फिल्म डायरेक्टर थे, जर्मनी से कॉस करके आए और उन्हें करनी थी शादी मेरे दादी से।
अच्छा।
वो मेरे दादाजी थे। तो उनकी हो गई शादी और वो बोले आप अब जो करना अभी करो, एक्ट्रेस बनना है तो बनो।
अच्छा, बोले ठीक है।
हाँ, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे वो। तो वो बन गए एक्ट्रेस। और देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। सब रोल्स उनके जो हुए, सीता के रोल्स।
अच्छा।
तो फॉरगेट डिसरिस्पेक्ट, उनको इतना रिस्पेक्ट मिला।
पैर पड़ते होंगे।
और हाँ, पैर पड़ते थे। उनकी मूर्तियां, फोटोग्राफ्स पीपल के मंदिरों में रहती थी। और उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत इंटेग्रिटी थी, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी ईगो नहीं था। तो मुझे लगता है भगवान ने भी उन्हें ब्लेसिंग्स दिए थे। और फिर उन्होंने लॉन्च किया अपने 2 बेटियों को, नूतन और तनुजा। हाँ, तो वो उनका बिजनेस था, शोभना पिक्चर्स।
अच्छा।
और पहले नूतन को लॉन्च किया, फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, बहुत पैसे गए, हमारे पैसे, उनके पैसे डूब गए।
खुद की फिल्म बनाई थी क्या?
ऑलवेज।
अच्छा।
प्रोड्यूस एंड डायरेक्टर इज अ वेरी गुड बिजनेस वुमन, क्योंकि जब पैसे नहीं होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस था, उन्हें मालूम था कि हाँ सब ठीक। तो लेकिन वो बोल रही थी मुझे, मैंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने बेटियों को स्विट्जरलैंड भेजा, फिनिशिंग स्कूल भेजा, फिर वापस लेके आए और फिर से लॉन्च किया। और सब स्क्रिप्ट्स खुद लिखते थे।
अच्छा।
अपने बेटियों के साथ और फिल्म्स उनके साथ बनाते थे। और हाँ, द रेस्ट इज हिस्ट्री, आप जानते हो। फिर नूतन, तनुजा, नाउ काजल।
तो हमारे टाइम की है। तो शोभना जी की कितनी फिल्म्स आई थी?
एक्चुअली मुझे भी कोई आइडिया नहीं है।
नहीं, ग्रैंड डॉटर हो और पता नहीं है।
नहीं, मैंने एक्चुअली देखी भी नहीं, क्योंकि मोस्टली मराठी में थी।
हाँ।
तो मुझे ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था और ब्लैक एंड व्हाइट थी, तो मैं कहती थी मुझे इंटरेस्ट नहीं है ये रबिश।
ब्लैक एंड व्हाइट ही था।
तो देखी नहीं मैंने।
मैं आपको इस बात पे कुछ एक और बात बाद में बताऊंगा।
Sure.
एक बुक मैं लिख रहा हूँ जिसमें 9 रिटायर्ड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की स्टोरी लिखूंगा।
अच्छा,
तो आपकी जो मौसियाँ हुई ना?
नहीं, मेरी बुआएं हुई।
बुआएं हुई,
हाँ।
मैं भी उनको भी ले लेंगे,
डेफिनेटली
बात करूंगा।
तो एक एक का देहांत हो गया है, आपको मालूम है, नूतन जी।
हाँ, करेक्ट।
और तनुजा जी, आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी टू,
शी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड
टच वुड वेरी क्लोज टू हर। हाँ,
तो ऐसी एक नई यूनिक बुक है ये, इंडस्ट्री पे अभी तक कभी नहीं लिखी गई है।
अच्छा,
तो लोग बुक करते भी हैं तो करंट स्टार्स के बारे में करते हैं।
हाँ,
मैं बात कर रहा हूँ जो रिटायर हो गए हैं।
हाँ,
और काफी कुछ लोगों के दिमाग से भी हट गए।
करेक्ट,
मुझे आई वांट टू ब्रिंग देम अलाइव।
ओह, दैट विल बी लवली।
सो आई एम ऑलरेडी टॉकिंग, आपसे भी बात करेंगे
डेफिनेटली।
सो थैंक यू वेरी मच।
नो, माय प्लेजर एंटायरली।
आप आए हमारे साथ, पूरा टाइम निकाला, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा इस टाइम। नॉर्मली हम बिजनेस पीपल का करते हैं, बट वो थोड़ा बोरिंग साइड पर चले जाता है। आई डोंट नो हाउ टू ब्रिंग इट आउट। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू।
FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम छू लो आसमान, और आज हमारे बीच थी मधुरा समर्थ, जो है फाउंडर ऑफ रिपल एनिमेशन। इनसे बातचीत कर रहे थे विकास मिटेसेन, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नजारा टेक्नोलॉजीज, प्रेसिडेंट IBG एंड द ऑनररी काउंसिल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ माली। चलते चलते हम आपको ये बताएं, हमारे प्रोग्राम में निर्मिति सहायक थी प्रीति यादव, और FM गोल्ड की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।